एक ही। आज जीव गोस्वामी पार प्रतिरोभाव दिन है तो हम उनकी महिमा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सब वैष्णव के आशीर्वाद द्वारा जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के सिद्धांत आचार्य कहलाते हैं। संबंध विधेय प्रयोजन ये तीन जो विभाग है वैदिक शास्त्रों के, इन सब के लिए जो आचार्य थे रूप गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध विधेय प्रयोजन के आचार्य है। तो ये सब प्रस्थापित किया विशेष रूप से वो जीव गोस्वामी पाद ने किया। तो आप तीन चीजें देखेंगे इस प्रवचन में, भारत और वृंदावन की उस समय क्या परिस्थिति थी जब गोस्वामी आए थे, दूसरा जीव गोस्वामी के जीवन के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे और विशेष करते हैं हम जीव गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 14वीं-15वीं शताब्दी थी उस समय जो इस्लाम का राज्य था भारत पे पूरा अच्छी तरह से उन्होंने, अच्छी तरह से बुरी तरह से जो भी कहना है, उन्होंने प्रस्थापित कर लिया था। और कुछ कुछ थोड़े से समय हिंदू राज्य थे, जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु लीला के समय ओडिशा में प्रताप रुद्र थे जो हिंदू राजा थे, बंगाल में नवाब हुसैन शाह थे और जो दिल्ली था वहां पे उस समय अकबर अभी तक नहीं आया था, उसके पहले जो हुमायूं था तभी वो राजा था। तो उस समय जो वैदिक यज्ञ करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि जो मुसलमान राजा थे वो सब उध्वस्त कर देते थे उसको। तो पर जो वैदिक शास्त्र के अनुयायी थे उनका तो प्रबल इच्छा थी कि जो वैदिक धर्म का पालन जरूर करना ही है। इसलिए हम देखते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी से सारे भारत में जो भक्ति है और भक्ति खास करके जो कीर्तन के द्वारा, गान के द्वारा, कथा के द्वारा वो बहुत फैलती है। महाराष्ट्र में देखते हैं तुकाराम महाराज थे, राजस्थान में मीराबाई थी, गुजरात में नरसिंह मेहता थे, ऐसे ही पूरे भारत में हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल में आए, उसके पहले वहां पर जयदेव गोस्वामी हुए थे, विद्यापति हुए थे, तो ये सब चंडीदास थे। इन सब ने भक्ति के द्वारा जो वैदिक धर्म है उसके पालन के लिए सुविधा उत्पन्न कर ली, क्योंकि अगर भक्ति करनी है तो मंदिर जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को मंदिर बनाने के लिए कहा वृंदावन में, पर उन्होंने नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य थे उनको नवद्वीप के आसपास कोई मंदिर बनाने को नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो नवाब हुसैन शाह राजा था वो बड़ा खूंखार था तो वो मंदिर ध्वस्त कर देता था। और उस समय जो गोस्वामी थे वृंदावन इतना ज्यादा जाना माना नहीं था। हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे गए तो राधाकुंड भी पता नहीं था किसी को, लोगों को लग रहा था कि एक छोटे खड्डे में क्यों ये स्नान कर रहे हैं दुनिया। तो उस समय उसके बाद ही अकबर आया था, तो अकबर थोड़ा सा सहनशील था इसलिए गोस्वामी लोग वहां पे मंदिर बना पाए। तो इस पार्श्वभूमि जो भक्ति थी, भक्ति चारों ओर बहुत उजागर हो गई थी क्योंकि भक्ति के लिए मंदिर जरूरी नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं और कोई आ गया आक्रमण करेंगे तो भाग जाएंगे। तो इस तरह से वास्तविक ऑफकोर्स हमें स्थायी रूप से कुछ कार्य करना है तो फिर हम मंदिर चाहिए, पर भक्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जो वैदिक धर्म था उसका प्रधान रूप से पालन भारत में उस समय भक्ति के द्वारा हो रहा था। और क्योंकि सभी जगह जो ब्राह्मण थे वे ब्राह्मण कई बार ऐसे कहते थे कि जो वैदिक धर्म है उनका वे ही पालन कर सकते हैं, और वैदिक धर्म का पालन अगर वैदिक शास्त्र समझना है तो केवल संस्कृत में ही समझ सकते हैं। तो अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है और संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप खुद कुछ धर्म नहीं कर सकते, सिर्फ हम आके धर्म करेंगे और आपको आके देखना है, मतलब हम आके यज्ञ करेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ बैठना है और हमको दक्षिणा देना है। तो उससे क्या हो गया था कि व्यावहारिक रूप से भक्ति का कोई आनंद और भक्ति का कोई अनुभव साधारण लोगों को नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जो अलग अलग संत है उस समय जो हुए उन सब ने जो अपने गीत वर्नैक्यूलर लैंग्वेजेस, मतलब जो वहां के लोक भाषा थी, जैसे नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा, महाराष्ट्र तुकाराम महाराज ने मराठी में, इस तरह से कि वो वैदिक शास्त्रों का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत लिया, पर वो जो देश की जो साधारण भाषा थी उन सब ने लिखा। और इससे क्या हुआ कि इससे ये बहुत लोकप्रिय हो गया, पर जो 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 जन्म से खुद को ब्राह्मण मानने वाले लोग थे वो इसको बिल्कुल आदर नहीं दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वे उन्होंने भक्ति के पुनः जागृत किया, पर वे यद्यपि भक्ति के द्वारा सबको सबको मार्ग दे रहे थे, जगाई मदाए को, प्रताप रुद्र को, या बताया कई बार कई जो मिलेच्छ थे उनको भी उन्होंने भक्त बनने का मार्ग दिया, पर चैतन्य महाप्रभु भी जो जाति की पद्धति थी उसके खिलाफ नहीं गए डायरेक्टली। उन्होंने कभी जोर नहीं लगाया कि हरिदास ठाकुर को या रूप सनातन गोस्वामी को जगन्नाथ के अंदर मंदिर के अंदर आने देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि जो वैदिक संस्कृति है उसको जो उसको ठुकराने की जगह पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए बाकी सब लोगों ने, बाकी सब तथागत भक्त संत थे, उन सब ने साधारण भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे, पर चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को बोला कि आप सब आपके ग्रंथ संस्कृत में लिखो। तो हम देखते हैं कि बंगाल में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो ग्रंथ बंगाली में लिखे थे, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, ये सब बंगाली में है। पर जो गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, गोस्वामी लगभग हर एक ग्रंथ जो लिखा है वो संस्कृत में ही लिखा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के क्योंकि जो वैदिक शास्त्र वैदिक पद्धति थी, संस्कृति और पद्धति जो सनातन काल से चालू आ रही है, उसके जो ब्राह्मण लोग खुद तथाकथित जो खुद को इसके रखवाले मानते हैं, तो उनको ठुकराने के जगह उनको दिखाना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं उसका असली मर्म क्या है, भक्ति है। इसे नाना शास्त्र विचार नहीं करी मानो सद्धर्म संस्थापक, कि अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करके जो संस्कृत में पंडित है उनको ही ये ब्राह्मण लोग मानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि आप वैदिक शास्त्रों को मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं, संस्कृत में वैदिक शास्त्रों के आधार पर दिखाया गया आपको कैसे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। तो यह गोस्वामी का उद्देश्य था, नाना शास्त्र विचारण निपुण निपुण थे, अलग अलग शास्त्रों में अध्ययन करके फिर उसका मर्म निकालना। और जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और निजी गोस्वामी, ये सब सारस्वत ब्राह्मण परिवार थे, बड़े आदर का परिवार था। तो इनके कारण चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मण थे। अभी हमें देखना है कि भक्ति दिव्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इस भौतिक जगत में अभी तक ऐसे हुआ है कि जो तथाकथित उसको जाति से ब्राह्मण मानते हैं वे जो ब्राह्मण नहीं है उनको आदर नहीं देते। प्रभुपाद जी के शिष्य विश्वकीर्ति प्रभु बता रहे थे कि वे पहले बार जब प्रभुपाद जी वृंदावन में लेके आए भक्तों को, तो फिर पाश्चात्य देशों के तो ये सब जहां से देख रहे थे कौन है ये भक्त और कौन है ये लोग आए हुए। और जब वो कहीं मंदिर में कुछ खरीदने जाते थे, मंदिर से बाहर कहीं लोही बाजार में कुछ खरीदने जाते थे, तो वो ब्रजवासी लोग तथाकथित ब्राह्मण क्या बोलते थे, आपका पैसा आप हमको बताओ यहाँ पे टेबल पे रखो। मतलब क्या, जो हम कहते जो अछूत जो पहले कहा करते थे, तो उस तरह से ये वैष्णव को दिखा रहे थे। तो प्रभुपाद जी को जब उन्होंने बताया तो प्रभुपाद जी बोले देखो उनकी चेतना कि वो कह रहे हैं कि आप अशुद्ध है पर आपका पैसा शुद्ध है। बोले हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते पर आपने स्पर्श किए पैसे को स्पर्श कर सकते। तो ये क्या है, ये मिथ्याचार है। तो इसके कारण जो वैदिक संस्कृति है उसका बड़ा ह्रास हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को बताया कि आपको जो वैदिक संस्कृति तथाकथित रखवाले मानते हैं खुद को उनको दिखाना चाहिए कि उनको ही शास्त्र पता नहीं है, शास्त्र का तार क्या है, वेदेश सर्वे रहमेव वेद, वो आपको दिखाना चाहिए। तो इसलिए सभी गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे वो प्रधान रूप से संस्कृत में लिखे। जीव गोस्वामी जो स्वयं थे बहुत बड़े पंडित थे। तो क्या है, भारत में बाकी इतिहास में रिकॉर्ड ज्यादा रखे नहीं जाते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं तो भी ज्यादा ध्यानपूर्वक नहीं रखे जाते। तो कब उनका जन्म हुआ था एग्जैक्टली पता नहीं है, पर लगभग 1510 के समय उनका जन्म हुआ था। क्योंकि तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास 1510 में लिया, और उसके बाद में जब वे रामकेली गए थे तब जीव गोस्वामी वहां पे थे। जी गोसाई बहुत छोटे थे तो उनके पिताजी थे वल्लभ मलिक और रूप सनातन गोस्वामी जो थे अनुपम और संतोष मलिक, वो सब वो तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और समझे जी गोसाई बहुत छोटे थे तो उनको इजाजत नहीं दी गई क्योंकि जो रूप सनातन थे वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में मंत्री थे तो इसीलिए वे अगर किसी हिंदू संघ को जाकर मिल रहे हैं तो उनसे संशय आ सकता है। रात के अंधेरे में रूप सनातन गोस्वामी वहां पे गए थे तो फिर जीव गोस्वामी छोटे से बालक थे तो मेरे पिताजी मेरे चाचा कहाँ जा रहे हैं तो चुप चुप के वे उनके पीछे चले गए और जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति कैसे रूप सनातन शरण ले रहे हैं उनके पैसा उनके पिताजी वल्लभ शरण ले रहे हैं प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं तो उसका जो उनके हृदय में बहुत चैतन्य महाप्रभु के पड़े प्रति बहुत आकर्षण हो गया और फिर इस तरह से जब उनके पिताजी छोड़ के चले जब उनके पिता चाचा सब छोड़ के चले गए चैतन्य महाप्रभु शरण जाने के लिए तब वो भी जाना चाहते थे पर वो बहुत छोटे थे तो फिर तब से वो चैतन्य वो छोटे छोटे गौर निताई के विग्रहों की पूजा करते थे और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के स्मरण में रहते थे कृष्ण भगवान के स्मरण में रहते थे और जब 12 साल के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वे श्रीराम के लिए से नवद्वीप आ गए। जानते थे तब तक कि चैतन्य महाप्रभु अपना वैभव धाम लौट गए हैं पर वहां पर नित्यानंद प्रभु थे और फिर नित्यानंद प्रभु जैसे गोस्वामी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। जानते थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उन्हें अपना आशीर्वाद दिया अपने चरण कमल उनके सिर पर रखे और उनको सारा नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराई। चाहे नवद्वीप धाम में अलग अलग जगह पे कौन सी कहाँ क्या लीलाएं की थी और वहां पे शची माता स्वयं थी विष्णु प्रिया थी सब ने जीव गोस्वामी भरपूर रूप से अपना आशीर्वाद दिया उनको। और फिर जीव गोस्वामी ने आशीर्वाद मांगा कि मैं वृंदावन जाके मेरे चाचा है उनको सहयोग करूं। नित्यानंद प्रभु बोले नहीं तुम्हें उसके पहले तैयारी करनी होगी तुम जाओ वाराणसी में। वाराणसी तो वास्तव में मायावाद की राजधानी थी। प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि वाराणसी इज द वृंदावन ऑफ द मायावादी कि जो भक्तों के लिए वृंदावन है वो मायावादियों के लिए वाराणसी। तो ये बोले कि आप वाराणसी जाओ और वहां पे आप संस्कृत में पांडित्य प्राप्त। तो फिर वहां पे जीव गोस्वामी गए और मधुसूदन वाचस्पति वहां के विख्यात संस्कृत पंडित थे उनके वहां पे जाके उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया और इतने निपुण हो गए कुछ ही समय में कि उनके सारे शिष्य थे उनमें से सर्वप्रथम बन गए और फिर संस्कृत में पांडित्य प्राप्त करने के बाद वे वृंदावन चले। और जब वृंदावन गए वो तो जीव गोस्वामी सब गोस्वामियों से सबसे छोटे थे यंगेस्ट और सब छह गोस्वामियों से अकेले ऐसे गोस्वामी हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्टली उसे कोई वार्तालाप नहीं हुआ था उनका चाहे गोपाल भट्ट हो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो सबका चैतन्य महाप्रभु से कुछ थोड़ा बहुत तो वार्तालाप हुआ था पर जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे पर सबसे प्रोलिफिक सबसे अधिक ग्रंथ उन्होंने ही लिखे। तो फिर उसके बाद में जब वृंदावन में आए तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा मांगी क्योंकि सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे तीनों में। सनातन गोस्वामी बोले कि नहीं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अधिक प्रिय है आप उनसे दीक्षा लो। तो फिर रूप गोस्वामी के पास गए फिर रूप गोस्वामी ने उनको वो तो बड़े सक्षम थे बुद्धि के दृष्टि से पर रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि उनको अगर भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है तो बुद्धि केवल महत्वपूर्ण नहीं है बुद्धि जरूरी है पर उसके साथ साथ नम्रता जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने उनको बड़ी निम्न सेवा में लगाया। तो जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी कुछ ग्रंथ लिखते थे तो फिर उसके लिए जो पर्चिया है जो पन्ने होते हैं पन्नों को सुखाना पड़ता है उस समय जो ग्रंथ लिखना बड़ा मुश्किल होता है जो टाइपिंग कर सकते इरेज सकते वैसे नहीं है वहाँ पे पन्नों पे लिखना होता है तो उस सब वो पन्ने बनाना उसके जो पूजा है या हम बैकअप बोलते हैं तो जीव को तो वैसे वो बैकअप कर देते अपने गुरु के लिए और बहुत निम्न सेवा की उन्होंने कई साल तरह से सेवा की उन्होंने। और उस समय जीव गोस्वामी तो कई प्रसंग है उनमें तो दो प्रसंग है उनमें से एक बोलूंगा मैं तो दोनों से वही तात्पर्य निकलता है। एक बार एक रूप कविराज नाम के बड़े पंडित वहां पे आए और वो पंडित ऐसे थे कि वो सबसे विवाद कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। तो जब वो आए तो उन्होंने सुना कि वृंदावन में वो सारे भारत से जाके आए थे, सबको हरा दिया था, जयपत्र था उनके पास, जो भी हारता था आपको यहाँ सही कर सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो फिर वो रूप सनातन गोस्वामी के पास आए, उन्होंने सुना कि बड़े पंडित हैं। रूप सनातन गोस्वामी तो ऐसे तर्क तर्क में सुचि नहीं रहते थे, बोले कि आप तो इतने बड़े पंडित हो, हम तो यहाँ पे पेड़ के नीचे रहते हैं, आपका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सोचते हम हमारा समय क्या क्यों बर्बाद करें, बोले आप आपका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं नहीं, हम तो अगर आप हार मानते हो तो लिखो यहाँ पे। उन्होंने तुरंत लिख दिया। और फिर वो जब जा रहे थे बड़े गर्व के साथ, मैंने हरा दिया रूप सनातन गोस्वामी को, तो उसने सुना कि उनके उनके जो भतीजे हैं जीव गोस्वामी, वे बड़े बड़े पंडित हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनको भी हरा देता हूं मैं। और फिर उनके पास गए, बोले ये देखो मैंने तुम्हारे चाचाओं को हरा दिया है, तुम भी हार मान लो और यहाँ पे इस्तीफा कर दो, यहाँ पे सिग्नेचर कर दो आप, तो दस्तखत कर दो। तो फिर जीव गोस्वामी जब ये देखा तो वे क्रोध हो गए। उनका क्रोध जो था वो अहंकार से नहीं था, वास्तव में प्रेम के कारण था। जब हमारा कोई अपमान करता है तो जिस तरह से हमें क्रोध होता है, वैसे शुद्ध भक्त को जो भगवान का अपमान होता है क्रोध होता है। हनुमान जी को जब रावण ने अपमान किया तो हनुमान जी क्रोध नहीं हुए, पर जब रावण राम के बारे में अपराध करने लग गए तो हनुमान जी क्रोध हो गए। तो भक्त का भी अहंकार होता है, पर वो मिथ्या अहंकार नहीं होता, सत्य अहंकार होता है। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि ये इसका इतना ये इस तरह से रूप सनातन गोस्वामी के बदनामी करेगा, राधा गोकुलानंद भगवान की जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा मैया की कौलताय चंद्र की चार, वे क्रोधित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि इस तरह से रूप सनातन गोस्वामी की बदनामी हो, और वे समझ गए कि वास्तव में इसे कोई वाद विवाद किया नहीं होगा, क्योंकि वे अपने चाचाओं के स्वभाव को जानते थे। तो उन्होंने अपने जो रूप सनातन गोस्वामी जो गौड़ी संप्रदाय है उसकी मान रखने के लिए उनसे कहा कि वास्तव में तुम तो मेरे चाचा ने उसे विवाद किया ही नहीं है, क्योंकि वे ऐसे समय में व्यर्थ ऐसे चीजों में व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहते, पर तुम मुझसे विवाद कर सकते हो। 7 दिन तक उन्होंने विवाद हुआ और पूरी तरह से हरा दिया उन्होंने, और जब हरा दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए वो कि उन्होंने अपनी जो परंपरा है संप्रदाय की इज्जत बरकरार रख ली। और फिर रूप गोस्वामी को बताने चले गए, वो रूप गोस्वामी को बताने चले गए। तो रूप गोस्वामी जब सुना तो बड़े आनंद से वो बता रहे थे जीव गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी क्रोधित हो गए, बोले कि तुम क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाया तुमने इस तरह से, जो वृंदावन में हमें भगवान की भक्ति करने के लिए आना है, तुमने इस तरह से अपना समय गंवाया, इसका मतलब है कि एक ही कारण है, तुम्हारा बड़ा अहंकार है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम कितने बड़े पंडित हो, और जिस व्यक्ति का अहंकार है वो व्यक्ति वृंदावन में नहीं रह पाए, चले जाओ वृंदावन से। कल्पना कीजिए किस तरह से ये कितना बड़ा सदमा हो, कितना बड़ा चोट होगी उनके लिए। वो मायावी कोई बाहर क्रिकेट की कारण थी, क्रिकेट आजकल जैसे क्रिकेट मैच होते हैं उस तरह से इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर पर मैच होते थे, और जो चैंपियन होता था वो सब उस गुणगान होता था। तो कुछ साल पहले जब भारत जीत के आए थे तो एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक हजारों लोग उनको देखने के लिए आए थे, दर्शन देने के लिए। उसके बाद में हार गए तो चप्पल की हार पहना दी, ये बहुत ही जरूर होता है। पर जो जीत के आता है उसका अगर अपमान होता है तो कितना मुश्किल है वो सहन करना। पर जीव गोस्वामी वहां चले गए और वो रोने लग गए कि मैं क्यों इतना बड़ा अहंकार है। वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे तुम खुद को मेरे गुरु कहते हो, तुमको पता नहीं है मेरे कितनी शुद्ध इच्छा थी, मेरी चिंता कितनी शुद्ध थी। अगर तुम मेरी शुद्ध चिंता को समझ नहीं रह सकते इसका मतलब तुम अशुद्ध हो, इसका मतलब तुम मेरे गुरु होने के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें ठुकरा देता हूं। इस तरह से उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बड़ी नम्रता स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ये जिस रूप गोस्वामी अगर कह रहे हैं तो वो ही सत्य है। और फिर वृंदावन चले गए और मथुरा के पास एक गुफा है उसमें जाकर रहने लग गए। वो उस तरह से गुफा में रह रहे थे, वो तभी सनातन गोस्वामी गांव जाते थे और वे वास्तव में दक्षिणा में वो कुछ प्रसाद नहीं मांगते थे, वो वास्तव में उपदेश देते थे और सबको प्रेम प्रदान करते थे। तो उस तरह से जा रहे थे तो वो एक घर पे गए और उन्हें ठुकठकाया और फिर वो रुके तो कोई आया नहीं। तो फिर वहां पर देखा कि अंदर एक ब्रजवासी स्त्री है और वो घर पोस रही है। तो फिर जब उन्होंने से देखा तो उन्होंने वापस ठकठकाया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा जोर से ठकठकाया। तो फिर वो बोली कि कितने तुम उतावले हो, हमारे गांव के बाबा है वो तो कभी भीख मांगते ही नहीं है, वो तो अयाचक वृत्ति उन्होंने अपनाई है, हम उनको जाके देते हैं तो वो अन्न स्वीकार करते हैं, आप दो मिनट के लिए रुक सकते हैं। सानंद गोस्वामी सोचने लगे कौन है ये बाबा, उन्होंने बताया कि वो तो एक जो अजगर है, अजगर जो पहले रहते थे उस गुफा में रहते हैं और वहीं पर रहते हैं, वहां से बाहर ही नहीं निकलते। तो जब उन्होंने सोचा तो वो पहले सोच रहे थे कि जीव गोस्वामी कहाँ गए हो, सारा प्रसंग पता था। तो फिर वे वहां पे गए और वो इतना छोटा खड्डा था कि उनको रेंगते हुए अंदर जाना पड़ा, गुफा जैसे थी वो, और वहां पे गए तो जीव गोस्वामी उनको बैठने के लिए भी ठीक नहीं थे, सदैव चिंतन कर रहे थे, हरिनाम रो जब कर रहे थे और रो रहे थे कि ओ हरिनाम प्रभु से याचना कर रहे थे कि मेरा अहंकार नष्ट कर दो, नम्र बना दो, प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। और फिर रूप गोस्वामी, उन्होंने जीव गोस्वामी को बाहर लाया और फिर उनको वो इतने अशक्त हो गए थे क्योंकि कुछ खाते ही नहीं थे, बड़े बीमार भी हो गए थे, उनको पोस के उनको अच्छा किया और फिर रूप गोस्वामी से मिलने गए। और रूप गोस्वामी से उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी आप चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत सिखाए हैं उसका पालन नहीं कर रहे थे। तभी रूप गोस्वामी तो बड़े आचार्य है, वो कैसे कह सकते हो तो मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी नम्र है, वो भी बड़े नम्र है। तब और यद्यपि वे जीव गोस्वामी को खंडन को प्रशिक्षण लेने के लिए इतना उनका उनको डांटा उन्होंने, पर अपने वरिष्ठ जो थे सनातन गोस्वामी के प्रति वे बड़े नम्र थे और उनसे कहने लग गए कि कौन सा सिद्धांत नहीं पालन कर रहा हूं मैं, कृपया मुझे बताओ ताकि मैं पालन कर सकूं। तो फिर उन्होंने बताया तुम बताओ कौन कौन सा सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु के। फिर बताने लगे नाम रुचि, वैष्णव सेवा और फिर जीव दया। हाँ, जीव दया का तुम पालन नहीं कर रहे हो। और फिर वो समझ गए क्या बोल रहे हैं। फिर उन्हें सब कुछ बताया तो वो जीव गोस्वामी को लेके आ गए वापस और जीव गोस्वामी का आलिंगन किया, उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। और ऐसा एक और प्रसंग हुआ जो वल्लभ भट्ट के साथ हुआ, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है अभी, पर ये दो प्रसंगों में जीव गोस्वामी बिल्कुल नम्रता दिखाई। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रूप गोस्वामी की कुछ गलत फहमी थी, रूप गोस्वामी जानते थे कि जीव गोस्वामी में कोई गर्व नहीं है, पर फिर भी वे परीक्षण करना चाहते थे कि सही में नम्रता है, क्योंकि जो भक्ति का ज्ञान है बहुत स्वीकार करने के लिए हृदय की नम्रता बहुत जरूरी है। और फिर इस तरह से जब पूरी तरह से नम्र रहकर जो उन्होंने उनको डांटा, उनको सजा दी, सब कुछ स्वीकार किया जीव गोस्वामी ने, तो इसके द्वारा रूप गोस्वामी का हृदय जीव गोस्वामी ने जीत लिया। जब अगर भक्त में कोई डांटते हैं कभी वरिष्ठ भक्त, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई भौतिक क्रोध के कारण डांट रहे हैं, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि गलतफहमी भी होगी, पर अगर हम प्रतिकार नहीं करते हैं, नम्रता रखते हैं, तो उससे हम जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका हृदय जीत सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद जी जब अगर आप हमें डांटते हैं तो हमें कैसे लगना चाहिए, क्योंकि तो भक्तों का जीवन का उद्देश्य था कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, तो प्रभुपाद जी अगर नाराज होकर प्रभुपाद जी डांट रहे तो सारा विश्व उद्वस्त हो गया ऐसा लगता था उनका। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि दुनिया में सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं, सब गलत कार्य कर रहे हैं, पर वो गलत कार्य कर रहे हैं उनको कर्म फल भुगतने वाले हैं और वो नरक में जाएंगे, पर आप इतने भाग्यवान हो कि आपके लिए कोई इतनी परवाह करता है कि अगर आप कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो आपको सही कार्य मार्ग में लाने के लिए वो आपको डांट रहे हैं, तो वो डांट के पीछे आपको प्रेम दिखना चाहिए और इसलिए आपको खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये इकलौता मार्ग नहीं है खुद को भाग्यवान बनाने का, हम भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं, पर भक्तों का क्रोध जो होता है वह दिव्य होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो नलकुंवर मणिग्रीव की लीला है भागवत उनके दशम स्कंध के दशम अध्याय में बताते हैं कि नारद ने जब डांटा और शाप दिया नलकोर मणिग्रह को, तो बताते उदाहरण देते हैं कि कभी कभी छोटा बालक सो रहा है और बीमार है और सो रहा है, उसको दवाई देनी है, तो तभी पिताजी आगे क्या करते हैं, उसको चिंतित करते हैं, रोने लग जाता है और फिर ऊपर से उसको दवाई देती है, तो बताते फिर सो जाओ बोलते हैं। तो उस तरह से हम माया की माया की गोद से सो रहे हैं आराम से, भगवान को जब दवाई देनी होती है तो हम दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है भगवान को। तो ऑफकोर्स जीव गोस्वामी तो भगवान के इतने पार्षद है, पर जो उनके उदाहरण से हमें सिखाया जा रहा है, फिर उनसे इतना प्रसन्न होंगे जीव गोस्वामी से रघु गोस्वामी कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से जो राधा दामोदर का विग्रह है वो बनाया और फिर वो उनको प्रदान किया, बोला वो फिर वो उनके आराध्य देव मंत्र है। और उसके बाद में हमें प्रशिक्षण प्राप्त, पहले संस्कृत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, भक्तिमय शास्त्रों का जो वांग्मय उनके जो चाचा लिख रहे थे उन सबका गूढ़ रूप से अध्ययन किया, तो जीव गोस्वामी लिखते थे और जीव गोस्वामी उसका एडिटिंग करते थे। और फिर उसके बाद में वे इतने विश्वास पात्र बन गए सब गोस्वामियों के लिए कि जब रूप सनातन गोस्वामी अपने शरीर वो भगवत धाम लौट गए, तभी यद्यपि जीव गोस्वामी सब बहुत जवान थे, तभी सब वृंदावन के वैष्णव ने स्वीकार कर लिया कि ये हमारे नेता है, और केवल वृंदावन के वैष्णव ने भी, जो बंगाल के वैष्णव थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जीव गोस्वामी के जैसे सिद्धांत में कोई निपुण नहीं है। तो यहां तक जानवा माता जो कि जानवा प्रभु की पार्षद है, नरोत्तम विलास ने जानवा माता का इतना आदर से पता गया, तुमको उनका नाम भी नहीं रहता, श्री ईश्वरी कहा गया, तो ईश्वर और ईश्वरी श्री ईश्वरी, तो वो जब आती थी तो वो भी जीव गोस्वामी से मिलते, जीव गोस्वामी को बड़ा आदर करते थे, पर वो तत्व ज्ञान के बारे में भक्ति के बारे में उनसे चर्चा करते थे। और फिर जो बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव थे लोकनाथ गोस्वामी थे, वे लोकनाथ गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु से भी थोड़े उम्र में बड़े थे और जीव गोस्वामी थे उनके शिष्य के समान है, पर जब लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा नरोत्तम दास ठाकुर ने ली, तो नरोत्तम दास ठाकुर से उन्होंने कहा कि आप जाके जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करो, मैं आपका दीक्षा गुरु भले हूं पर आप शिक्षा जो है जीव गोस्वामी से ग्रहण करो। और फिर सारे जो अलग अलग मंदिर बन गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो राधा कुंड का विकास किया था, विस्तारित कहानी है, रघुनाथ गोस्वामी काफी वृद्धावस्था तक जिए, और बाद में जब वे भगवत धाम लौट गए तो सारे वैष्णव जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन के लिए आते थे। और फिर ऐसे नहीं है कि भक्त सिर्फ शास्त्रों में या भक्ति में मग्न रहता है और व्यावहारिक दृष्टि से कुछ भी उसको पता नहीं होता है। उस समय जो अकबर भारत का शहंशाह था, तो तभी उन्होंने तोदारमाल जो थे वो राजस्थान के राजपूत राजा थे और वे अकबर के राज्य में सरदार थे, तो उन्होंने कि कोई मुस्लिम आकर लच्छा आकर ये मंदिर को उद्वस्त न कर दे, इसीलिए उन्होंने वो तोदारमाल जीव गोस्वामी तोदारमाल से कहा कि आप अकबर से कहो कि ये जो मंदिर है ये अधिकृत है और इसको जो दिल्ली की सरकार है उसके द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी तक वो जो डॉक्यूमेंट्स है अकबर तोदारमाल और जीव गोस्वामी इन तीनों की दस्तखत है उसमें, अभी तक वो वृंदावन में जो वृंदावन इंस्टीट्यूट है उसमें मौजूद है। तो व्यावहारिक रूप से जो देखरेख होती है उसमें भी बड़े निपुण थे। और जब उन्होंने अपना शरीर वो भगवत धाम लौट गए, तो उस समय जो उन्होंने अपना खुद का विल लिखा, विल मतलब जो होता है कि व्हाट इज द विल कॉल्ड इन हिंदी, जो विल मतलब जो व्यक्ति अपने जो शरीर त्यागता है, तो फिर जो उनकी संपत्ति है उसका क्या होना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, वो विस्तारित रूप से उन्होंने लिख के दिया कौन सारे मंदिरों को संभालेगा। तो ये कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आसक्ति है। और भारत के इतिहास में वो जो जीव गोस्वामी लिखा है वो पहला विल है, उसके पहले इस तरह से पूरा सिस्टमेटिकली ये केस का कौन संभालेगा, इसका क्या होगा, तो क्या होगा, वो अभी तक दिल्ली का जो म्यूजियम है उसमें अभी तक वो विल है। तो व्यावहारिक रूप से भी जीव गोस्वामी बड़े निपुण थे, पर उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो शास्त्रों का लेखन में था। तो उन्होंने स्वयं 5 लाख श्लोक लिखे हैं ऐसे बताया। और ओरिजिनल संस्कृत श्लोक 500,000 श्लोकों ने लिखे हैं, तो हमें एक श्लोक याद करना मुश्किल जाता है। जहां तक उनके ग्रंथ है 25 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। और जीव गोस्वामी जब लिखते थे तो उनकी इतनी उत्साह होती थी लिखने के लिए। उस समय कैसे बता लिखना होता था तो ऐसे पन्ने पर लिखते थे, तो पन्ने पर अगर लिखना है तो एक साइड में लिख लिया तो फिर क्या होता है, पिछली साइड में लिखना है तो उस समय का जो इंक होता था, चाई होती थी, वो सूखने को समय लगता था। इसलिए अगर लिखा है तो फिर वो सूखने के लिए समय लगता है, फिर वो सूखने के बाद उसको पलटने का, फिर पीछे आगे लिखने का। अगर वो सूखा नहीं है, पहले पलट देंगे तो क्या होगा, जो लिखा हुआ है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए काफी धीरे धीरे लिखना पड़ता था। पर जीव गोस्वामी इतने उतावले थे लिखने के लिए और इतने स्पष्ट थे उनको क्या लिखना है, तो पहला पन्ना लिखते थे और फिर तीसरा पन्ना लिखते थे। वो पूरा पता था उनको क्या लिखने वाला हूं मैं दूसरे पन्ने में, उसे पन्ने में कहां अंत होने वाला है। फिर तीसरा पन्ना खत्म हो जाता था तब तक पहला पन्ना सूख जाता था, तो फिर दूसरे पन्ने पे लिखते थे। दूसरा पन्ना हो गया तब तक तीसरा पन्ना सूख जाता था, फिर चौथे पन्ने पे लिखते थे, फिर पांचवा पन्ना, फिर सातवा, फिर छठा, फिर आठवा। इस प्रकार से उन्होंने 500,000 ग्रंथ लिखे, 500,000 श्लोक लिखे। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वह हमारे जो संप्रदाय के मूलभूत ग्रंथ है। तो कैसे जब भी कोई महान हस्ती आती है और कोई आंदोलन चालू करती है, वो जब महान हस्ती चली आती है तो काफी समस्या आ सकती है। जैसे प्रभुपाद जी आने के बाद, ये प्रभुपाद जी के महान शिष्यों का श्रेय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महान आंदोलन चालू रही पर विस्तार से फैल गई। चैतन्य महाप्रभु आया, चैतन्य महाप्रभु इतना उन्होंने सारे बंगाल उड़ीसा सारे दक्षिण भारत को इतना भक्ति के बाढ़ में भिगो दिया। पर क्योंकि उन्होंने स्वयं कुछ ग्रंथ नहीं लिखे, कुछ संस्था नहीं बनाई, तो वो जब चले गए तो खास करके बंगाल और ओडिशा के जो भक्त हैं वो इतने उद्वस्त हो गए भावनिक स्तर पे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो सारा जो गौड़ीय संप्रदाय को आगे चलाने की जिम्मेदारी थी वो गोस्वामी ने ली, और गोस्वामी जीव गोस्वामी बड़े महत्वपूर्ण थे। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हम जानते हैं कैसे, वो ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण थे कि जानवा माता जी ने कहा कि आप ये ग्रंथ जो है वृंदावन से बंगाल लेके आओ, क्योंकि इन ग्रंथों के आधार पर बंगाल और उड़ीसा में आपस प्रचार होगा और फिर जो भक्ति है वो पुनः चालू रहेगी। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो अनेक ग्रंथ है, तो उन ग्रंथों में उसका विभाजन चार प्रकार में हम कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में हम वो ग्रंथों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। तो कुछ है ग्रंथ जो उन्होंने लीला लिखी है भगवान के बारे में, तो भगवान कृष्ण की लीला का आधार पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें से प्रधान है गोपाल चंपू। चंपू ये शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार की रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित है, उसको चंपू कहते हैं। तो गोपाल चंपू बड़ा विस्तारित ग्रंथ है, और खास करके जन्म भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है और द्वारका लीला, जो मथुरावन लीला द्वारका लीला है, उन दोनों का वर्णन है। और बहुत जो अस्पष्ट चीजें हैं भागवत में कि बलराम जी और कृष्ण के उम्र में कितना फर्क है, या फिर जो उनके बहुत से उदाहरण जटिल हो जाएगा अभी बोलते हैं, बहुत से जो अस्पष्ट चीजें हैं वचन संग से थोड़े प्रश्न उठते हैं, उन सबका जवाब इस कथन में उन्होंने किया हुआ है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, और उसमें जो लीलाएं है उसमें दिखाते हैं कि कैसे जो सब ब्रजवासी है वो जब वृंदावन से चले गए कृष्णा तो वो उतावले हो गए, और फिर नंद महाराज हमेशा संदेशवाहक भेजते थे, पहले मथुरा को और फिर द्वारका को, हमेशा देखने के लिए कोई कब कृष्ण क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। और फिर एक बार संदेशवाहक गए पर आए ही नहीं, और बहुत बमे के बाद आए तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कहां थे, बोले कि द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव था इसलिए हम वहां पे रुक गए थे। क्या उत्सव था, लेकिन वहां पे बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से। अच्छा, और फिर उन्होंने सारा वर्णन किया, नंद महाराज ने सुना तो नंद महाराज की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आपका आंखों आंसू क्या आ रहे, मैं सोच रहा हूँ कृष्ण के बारे में। वे बोले कि बलराम जी तो क्षत्रिय थे इसीलिए उन्होंने क्षत्राणी से विवाह किया, और अभी कृष्ण जो है वो किसी क्षत्रिय से विवाह करेंगे या किसी वैश्य से विवाह करेंगे।
क्योंकि अगर क्षत्रिय से विवाह करेंगे मतलब वो मान रहे हैं कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, वैश्य से विवाह करेंगे तो मेरे पुत्र है। तो
फिर उन्होंने संदेश भेजा, राधानी को संदेश भेजा था और गोपियों को कि मैं, कृष्ण बोले कि मैं आपसे इतना विरह में हूं कि मैं रोज यहाँ पे जो बगीचे बना रहा हूँ बगीचे को पानी डाल रहा हूँ ताकि जब हमारा मिलन होगा पुनः तो हम इन बगीचों में लीला करोगे। तो गोपियों ने संदेश भेजा वापस कि हम भी यहाँ पे आए हमारे लीलाओं के लिए बगीचे बना रहे हैं, पर हम बगीचे में हमारे हाथों से पानी डालते हैं, पर जब हम पानी डालते हैं वो जो वृक्ष है वो उगते ही नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों से ठंडा पानी हम डालते हैं पर हमारे गर्म आंखों से जो गर्म अश्रु आते हैं उससे सारे वृक्ष सूख जाते हैं। तो हमारा भी हृदय सूख रहा है, कृपया जल्दी से आ जाओ। और फिर गोपाल जी में वर्णन है कैसे कृष्ण भगवान स्वयं वृंदावन वापस आ जाते हैं, जो दंत वक्र का वध है करने के बाद वृंदावन आचार बहुत आनंद से उन्हें पुनर्मिलन होता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि चैत्र कृष्ण और राधा रानी के उनका विवाह नहीं हुआ था, वास्तव में वो इटर्नल कपल, शाश्वत रूप से भगवान है और भगवती है, पर यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि पूर्णमाया की योजना से कैसे कृष्ण और सारे गोपियों का विवाह भी हुआ था। और ये तथाकथित गोपियां थी जिनका किसी और से विवाह हुआ था, वो सब जैसे बताया है कि कुर्म पुराण में कि एक माया सीता का अपहरण रावण ने किया था, वैसे जो अभिमन्यु ने विवाह किया था वो राधा रानी से नहीं किया था, एक माया राधा से किया था। जो गोवर्धन माला ने विवाह किया था वो चंद्रावली से नहीं किया था, वो माया चंद्रावली से किया था। तो जैसे गूढ़ तत्व है उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने गोपाल चंपू में किया है। उसी तरह से उन्होंने जो जो गौड़ी संप्रदाय है उसमें व्याकरण और काव्य इस पर बहुत जोर दिया है। तो सिद्धांत जो वेदांत है वो जरूरी है, पर साथ साथ जो व्याकरण और काव्य है, काव्यात्मक ग्रंथ बहुत लिखे हैं। तो इसीलिए जीव गोस्वामी ने जो हरिनामामृत व्याकरण लिखा, तो किस तरह से जो हम व्याकरण के नियम सीखते सीखते भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो फिर जब जैसे उसमें एक संधि जो है, संधि का अध्याय चालू होता है, तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मैं अभी इच्छा करता हूं कि जो संधि है, ये संधि का अध्याय लिखने से मेरे मन की भगवान के साथ संधि हो जाए। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने लिखा है कि जैसे अंग्रेजी में दो प्रकार के जेंडर होते हैं, जेंडर मतलब जो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो संस्कृत है उसमें तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो उन्होंने अभी इनको नाम दिया है, तो क्या स्त्रीलिंग को लक्ष्मीलिंग, पुल्लिंग को नारायण लिंग और नपुंसक लिंग को ब्राह्मण लिंग दिया है। जो ब्राह्मण है वो भगवान को कुछ गुण नहीं मानते हैं, तो जो ब्राह्मण लिंग। तो इस तरह से जो तत्व ज्ञान है और भक्ति का रस है, दोनों का आस्वादन हम हरिनामामृत व्याकरण के अध्ययन से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी अगर भक्त संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हरिनामामृत व्याकरण के द्वारा सीखे। तो इसीलिए गोपी परानंद प्रभु ने जो भागवत विद्यापीठ चालू किया है, गोवर्धन ने, हरिनामामृत व्याकरण के आधार पर सिखाते हैं व्याकरण। साथ साथ उन्होंने एक और प्रकार के ग्रंथ लिखे जो उनके जो गुरु थे रूप गोस्वामी, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उस पर तात्पर्य। तो कई ग्रंथ उन्होंने ब्रह्म संहिता पे दिग्दर्शनी टीका लिखी, बहुत सुंदर टीका है। और वो जो टीका है दिग्दर्शनी टीका, उसके आधार पर प्रभुपाद जी ने बोला था कि तमाल कृष्ण महाराज को कि आप जीव गोस्वामी की टीका और सांसनोपी की टीका और उन्होंने जो खुद चरण जलवा में लिखा है, सबके संयोग से एक ग्रंथ बनाओ ताकि ब्रह्म संहिता सब लोगों को समझ सके। वो जो ग्रंथ है तो तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था, तो अभी वो जल्दी छापने वाले, उसका संपादन करने की सेवा मुझे मिली है, थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ। बहुत सुंदर ग्रंथ है, जीव गोस्वामी बहुत गूढ़ तत्व ज्ञान बताते हैं उसमें। जैसे वे बताते हैं कि कैसे भगवान जो समय और जगह इन दोनों के परे है, तो इसका उदाहरण कैसे देते हैं वो कि बताते हैं कि जब नारद मुनि द्वारका में आए थे और भगवान कृष्ण के अलग अलग महलों में गए देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो बता रहे थे कि न केवल कृष्ण हर एक महल में थे पर साथ साथ बोले कि हर एक महल में अलग अलग समय था। मतलब एक महल में भी समय हो रहा था, सुबह हो रही थी, दूसरे महल में दोपहर हो रहा था, तीसरे महल में शाम हो रही थी, दूसरे चौथे महल में अभी बहुत ही प्रातः काल होता, तो हर एक महल में अलग अलग समय था। कैसे संभव है ये कि भगवान न केवल काल के स्वामी है, समय के भी स्वामी, जगह के स्वामी नहीं है, लॉर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ, जगह के स्वामी है और काल के भी स्वामी है। इसीलिए भगवान न केवल एक ही समय में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं पर एक ही एक व्यक्ति अलग अलग समय पे भी व्यक्ति हो सकता है। मतलब वो एक जगह सुबह हो सकते हैं और उसी समय कहीं और जगह दोपहर हो रही वहां पे भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है उसमें, तो उन्होंने जो रूप गोस्वामी ने भक्त सामू सिंघुल लिखा उसको उन्होंने उसमें दुर्गम संगमणी टीका लिखी, बहुत सुंदर रूप से उसका वर्णन किया है, विस्तार किया है। और उनका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा उन्होंने वो है भागवत संदर्भ। तो जो शत संदर्भ उसको कहते हैं कि संदर्भ का अर्थ है कि वीविंग मतलब क्या, जब कोई सिलना, बेसिकली सिलना। तो उन्होंने क्या किया है, श्रीमद् भागवत को बहुत ही सुंदर रूप से इस तरह से सिलाया है जिससे कि जो वेदांत सूत्र का तात्पर्य है वह स्पष्ट हो सकता है। जैसे जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति है उसमें कोई भी संप्रदाय अगर हो तो उसको अगर अपना सिद्धांत प्रस्थापित करना है तो फिर उसको वेदांत सूत्र में तात्पर्य लिखना है जरूरी होता है। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये ही नैसर्गिक तात्पर्य है। पर नैसर्गिक तात्पर्य और व्यावहारिक तात्पर्य इसमें फर्क है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल कॉमेंट्री एंड लिटरल कॉमेंट्री। नैसर्गिक तात्पर्य मतलब क्या, वो व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा है और दूसरे ग्रंथ ने उसी का स्पष्टीकरण किया, उस तत्व का स्पष्टीकरण किया है। पर जो व्यावहारिक तात्पर्य मतलब क्या, इसका ये एक श्लोक लेना और उसका मतलब क्या है यहाँ पे बताना, दूसरा श्लोक लेना उसका मतलब बताना। जैसे प्रभुपाद जी की भगवदगीता यथारूप एक व्यवहारिक तात्पर्य, हर एक श्लोक को लेकर उस तात्पर्य लिखा हुआ है। पर श्रीमद् भागवत इस तरह से वेदांत सूत्र के एक व्यवहारिक तात्पर्य नहीं है, वही तत्व है पर व्यवहारिक तात्पर्य नहीं है। इसीलिए क्योंकि जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी थी कि जो गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत है उसको अच्छी तरह से प्रस्थापित करे, तो इसीलिए उन्होंने वो तो चेतन महाप्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे पर साथ साथ उनको यह भी जरूरी था कि वे प्रस्थापित करे गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने शत संदर्भ में क्या लिखा कि वेदांत सूत्र के जो तत्व है वो लिए है और वेदांत सूत्र के तत्व किस तरह से भागवतम के अलग अलग श्लोकों में प्रस्थापित किए हैं उसको बताया हमने। तो बहुत सुंदर है, तो इसमें 6 संदर्भ है, तो इसमें जो हमारा तत्व ज्ञान है पूरा बताया गया। तो पहला है तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ में वो बताते हैं सबसे पहले चीज कैसे है, जो श्रीमद् भागवतम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। और फिर उसके बाद में जो है भगवत संदर्भ, भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, कैसे है भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी एक व्यक्ति हो सकते हैं, उसका उन्होंने विस्तारण किया है। फिर परमात्मा संदर्भ बताया उन्होंने, भगवान और परमात्मा इनमें क्या फर्क है इसको बताया। और फिर उसके बाद में तो ये जो और उसके बाद में कृष्ण संदर्भ है, और फिर ये भगवान वास्तव में कौन है, कृष्ण है। तो उसमें उन्होंने कृष्ण संदर्भ में कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस श्लोक को लेकर उन्होंने विस्तारित रूप से वर्णन किया है। कैसे कोई कह सकता है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, उसका पूरा उन्होंने खंडन करके बताया कि विष्णु वास्तव में विष्णु कृष्ण से आते हैं, न कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। और वो सारे व्याकरण के नियमों को विवरण करके बताते हैं कि ये एक श्लोक है, ये एक वो जैसे योद्धा का भाव होता है, योद्धा के भाव में बोल रहे हो कि ये जो एक श्लोक है ये वास्तव में एक महारथी के समान है। जैसे एक महारथी युद्ध करने आ जाएगा तो उसके सामने 1000 रथी भी आ जाएंगे, 1000 योद्धा भी आ जाएंगे तो हरा देगा उनको। तो बोले उस तरह से ये एक श्लोक है, ये एक महारथी है। अगर आप दूसरे 100 श्लोक में लेके आओगे वो श्लोक के सामने कुछ है नहीं, इसलिए युद्ध में ये अकेला जीत जाएगा। पर वो बाद में बोलते हैं ये महारथी है पर ये अकेला नहीं है, इसके साथ भी 1000 योद्धा है। और फिर और बहुत से श्लोक बोलते हैं, इस तरह से कृष्ण ही सब अवतारों के स्रोत है। तो कृष्ण संदर्भ में वो प्रस्थापित करते हैं बड़े सुंदर रूप से। तो वे बताते हैं, तो ये पहले चार संदर्भ है, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ, ये संबंध के बारे में बताते हैं। और फिर जो भक्ति संदर्भ है वो अभिधेय के बारे में बताते हैं। तो कृष्ण तत्व संदर्भ सबसे छोटा है, कृष्ण संदर्भ काफी बड़ा है। तो जो भक्ति संदर्भ है उसमें बताया है कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, और जो भक्ति सामर्थ्य संतों में थोड़ा थोड़ा उल्लेख दिया है कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान और कर्म और योग से, पर उसका बहुत विस्तारित रूप से विश्लेषण जीव गोस्वामी करते हैं, अलग अलग शास्त्रों से आधार पर बताते हैं कैसे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो आध्यात्मिक जीवन में दो चीजें होती है, साध्य और साधन। तो साध्य क्या है, पहले चार संदर्भों ने प्रस्थापित किया कि जो साध्य है वह है भगवान श्री कृष्ण, और पांचवें संदर्भ में प्रस्थापित करते हैं कि जो साधन क्या है वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति। और फिर जो आखिरी संदर्भ है प्रीति संदर्भ, उसमें वो बताते हैं कि जो भगवत प्रेम के अलग अलग स्तर क्या है और किस तरह से सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति हो सकती है, और जो सब सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो सारे ब्रह्मांड में जो आनंद है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो आनंद है वह भगवत भगवत भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रीति उत्पन्न होती है उसका ही आनंद है वो। और जब ये शब्द संदर्भ लिखे तो उसके, और बहुत ही आजकल के सिस्टमैटिक लिखा है वो, पहले से पहले बोलते हैं कि मैं अभी इस संदर्भ में ये इस पर से स्पष्ट करूंगा, और फिर हमने बोलते हैं कि अभी ये सब स्पष्ट हो गया है, अभी इस विषय की हम चर्चा करेंगे, ये विषय की चर्चा हो गई अभी इस विषय की चर्चा करेंगे। तो बहुत ही योजनाबद्ध पद्धति में सारा संदर्भ लिखा हुआ है। अब प्रभुपाद जी संदर्भों के बारे में कई बार उल्लेख करते हैं चैतन्य चरितामृत की टीकाओं में, और प्रभुपाद जी बोलते थे कि जीव गोस्वामी इज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में सबसे बड़े तत्वज्ञानी थे। तो यह केवल हमारे संप्रदाय के आचार्य है इसलिए नहीं है, उन्होंने सही में बहुत सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान बताया है। और इस तरह से इसको राघव प्रभु बता रहे कि वाराणसी में जीव गोस्वामी राघव से प्रभु बता रहे कि जीव गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बनारस यूनिवर्सिटी में एक विभाग है, वहां पे संशोधन का विभाग है, रिसर्च का विभाग है वहां पे। तो जीव गोस्वामी इतना ध्यान पूर्वक इतना पूरा अपने बुद्धि अपने सामर्थ्य अपने भक्ति एकाग्रित करके ग्रंथ लिखे। तो अभी उससे हम क्या समझ सकते हैं कि वही जो कि जो भक्त होते हैं जो आचार्य होते हैं वो कितना प्रयास करते हैं कितना श्रम करते हैं कितना धैर्य रखते हैं कि जो भक्ति का सिद्धांत है उसको अच्छी तरह से रख के आगे फैलाए। और जो जीव गोस्वामी ने किया था वही आधुनिक युग में श्री प्रभुपाद जी ने किया। श्री प्रभुपाद जी ने अपने जो ग्रंथ लिखे वह बड़ी चुनौती थी, जैसे मैं बता रहा था कि जीव गोस्वामी ने क्या किया कि ही बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन भक्ति एंड वेदांत, कि जो भक्ति के जो आंदोलन सब चल रहे थे वो शास्त्रों के आधार पर थे, पर संस्कृत में नहीं थे, तत्व ज्ञान नहीं था उसमें गुजारा, पर उन्होंने एक ऐसे ब्रिज एक पुल बनाया भक्ति और वेदांत के बीच में, वो उनका संदर्भ है। ठीक उसी तरह से श्री प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है उसमें भी एक ब्रिज बनाया है, वो कैसे, वो भारत में भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में। तो जो प्रभुपाद जी की जो चुनौती थी उनके ग्रंथ लिखने के समय वो शायद चुनौती किसी भी आचार्य को उसके पहले नहीं थी, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने ऐसा जो तत्वज्ञान बता रहे थे वो ऐसे लोगों को बता रहे थे कि वो ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली फिलोसॉफिकली रिलीजियसली कल्चरली लिंग्विस्टिकली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑडियंस, कि जो वैदिक शास्त्र पहले जिन्होंने पढ़े हैं और जिसके लिए लिखे गए हैं जो पहले पढ़ते थे और जो प्रभुपाद जी से पढ़ने वाले हैं, प्रभुपाद जी से पढ़ने वाले हैं वो ऐतिहासिक रूप से भौगोलिक रूप से सांस्कृतिक रूप से भाषा के स्तर पे धर्म के स्तर पे कुछ भी पता नहीं था, और ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने सारे तत्व ज्ञान है वो स्पष्ट करके लिखा। और जो परंपरा की जो परंपरा मतलब क्या है, वास्तव में परंपरा मतलब ये केवल कुछ फोटो नहीं है, वो एक प्रवाह है, भगवान की कृपा का प्रवाह। तो जो प्रवाह है वो
एक आचार्य के हृदय से अगले आचार्य के हृदय में आती है, और प्रामाणिक आचार्य के हृदय से फिर एक प्रामाणिक भक्त के हृदय में आते हैं। श्री ठाकुर कहते हैं कि श्रुति क्या है, इट इज वो कहते हैं आपने गौड़िया भाष्य में कि द नेक्टरीन फ्लो ऑफ द नेक्टर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट कम्स डाउन इन डिसाइक्लिक सक्सेशन फ्रॉम द लिप्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इन टू द हार्ट ऑफ द सिंसियर डिसाइपल एंगेज इन अफेक्शनेट सर्विस, दैट इज श्रुति। तो क्या श्रुति, बड़ा बड़े पंडित थे, बड़ा विस्तारित परिभाषा देते हैं। क्या है कि जो परम सत्य की महिमा का मधुर प्रवाह है, जो परंपरा से आता है, जो गुरु के मुख से शिष्य के हृदय में जाता है, पर कौन से शिष्य के हृदय में, जो भक्तिपूर्ण जो स्नेहपूर्ण सेवा में लगा हुआ है, वह श्रुति है, वह शब्द है। तो वह जो प्रभक्ति का प्रवाह है वो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में फैलाया है, और प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से आज हमें भी मिल रहा है। तो हम जब इस तरह से हमारे पूर्वज आचार्य है उनकी महिमा को समझते हैं, तो उससे हमें कई चीजें मिलती है। हमें सबसे पहले समझता है कि हमारे पूर्वज आचार्य कितने महान थे, दूसरी चीज है कि उन्होंने कितना संघर्ष और कितने तपस्या की है इस भक्ति का संरक्षण करके हम तक देने के लिए। तो फिर उससे हमें कृतज्ञता होती है, हमें इच्छा होती है कि हम इसका जो हमें मिला है उसका संरक्षण करें और उसका हम विस्तार करें। तो उनके तत्व संदर्भ की शुरुआत में जीव गोस्वामी एक सुंदर प्रणाम मंत्र, अलग अलग प्रणाम मंत्र लिखते हैं, तो एक प्रणाम मंत्र लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के पति, तो प्रणाम मंत्र हम बोलेंगे, तो उसके बाद में हम विराम देंगे प्रवचन को। तो ये प्रणाम मंत्र वो और जैसे प्रणाम भी लिखते हैं तो प्रणाम में भी तत्व ज्ञान लिख रहे हैं वो, तो मैं पहले अर्थ बोलता हूँ और फिर हम इस लोग दोहराएंगे। अंत कृष्णम बहिर्गौरम, वे कह रहे हैं कि वो मेरे आराध्य देव कौन है, वो ऐसे है कि अंदर से वे कृष्ण है पर बाहर से गौर वर्ण धारण किया है, दर्शित अंगादि वैभवम, और वो अपना वैभव प्रकट कर रहे हैं। उनका वैभव क्या है, उनका वैभव जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अलग अलग अवतार आते हैं, वो अपने यंत्र से अपने शस्त्र लेके आते हैं। रामचंद्र भगवान आए थे, वो अपना दर्शमान लेकर, परशुराम अपने परशु लेके आए थे, पर चैतन्य महाप्रभु का क्या शस्त्र है, बोलते हैं उनका शस्त्र है उनका सौंदर्य, इस वेपन इज ब्यूटी। सो दर्शित अंगादि वैभवम, तो अंग और उनके जो सौंदर्य उसका वैभव वो दर्शन दिला करा रहे। और फिर वो कहते हैं कि संकीर्तनाद्य स्म, कि संकीर्तन आदि जो विधि है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण चैतन्य आश्रित, जो कृष्ण चैतन्य भगवान है उनका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। कृपया दोहराइए, अंत गौर अंत कृष्णम बहिर्गौरम,
कृष्णम बहिर्गौरम,
दर्शितांगादि वैभवम,
दर्शितांगादि वैभवम,
कलौ संकीर्तनाद्यै स्मः,
संकीर्तनाद्यै स्मः,
कृष्ण चैतन्यमाश्रितः,
चैतन्यमाश्रितः।
सारांश में हमने देखा कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने न केवल साधारण लोगों के प्रति हजारों हजारों की संख्या में भक्ति का प्रचार किया, पर इस तरह से उन्होंने प्रचार करने की चाहिए कि जो तथाकथित ब्राह्मण थे उनको भी भक्ति का तत्व ज्ञान और भक्ति की प्रथा स्वीकार है। इसीलिए हमने गोस्वामी को बताया कि आप संस्कृत में ग्रंथ लिखो, और हमने देखा कि वैसे जीव गोस्वामी न केवल बहुत बड़े पंडित थे पर बहुत नम्र और शरणागत थे अपने गुरु के प्रति। फिर हमने देखा कैसे उन्होंने अलग अलग ग्रंथ रचना की, चार प्रकार के ग्रंथ, एक तो तत्व, एक तो जो इस प्रकार के जो लीला के ग्रंथ गोपाल चंपु जैसे, जो एक काव्य और व्याकरण के ग्रंथ हरिनाम और व्याकरण जैसे, और फिर जो टीकाएं हैं जैसे कि दुर्गम संबंध तो भक्ति सामचंद, और तत्व ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत संदर्भ। श्री जीव गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।